ओम शांति। अभी का विषय है बुद्धि रूपी बर्तन की शुद्धि, और इसकी प्रेरणा आज की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा योग से बर्तन की शुद्धि होती है, बुद्धि का ताला खुलता है। तो मतलब बाबा ने बर्तन कंपैरिजन बुद्धि का किया, बुद्धि को बर्तन से कंपेयर किया। साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, बाबा बुद्धि की तुलना कंपैरिजन अनेकानेक वस्तुओं से करते हैं ना। कभी बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पांव, हाँ? कभी बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी हाथ, कभी बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी नेत्र, कभी कहते हैं बुद्धि रूपी पात्र, बुद्धि रूपी बर्तन, बुद्धि रूपी कलश, बुद्धि रूपी झोली, बुद्धि रूपी तिजोरी, बुद्धि रूपी यंत्र, बुद्धि रूपी कंप्यूटर, बुद्धि रूपी टेलीफोन, बुद्धि रूपी टीवी, बुद्धि रूपी यंत्र। अगर ध्यान से पढ़ेंगे मुरलियों को तो बाबा हर बार कंपेयर करते हैं, और कंपेयर कर करके ज्ञान को सहज बनाते हैं। तो जैसे आज बाबा ने कंपैरिजन किया बुद्धि की बर्तन के साथ, तो पहले इस कंपैरिजन से पहले हम बुद्धि को समझ ले। वैसे तो ब्राह्मण बनते ही बुद्धि क्या है हमें पता चल जाता है, क्योंकि पहला लेसन जब हम करते हैं तो उसमें ही ये बातें सारी आ जाती है कि आत्मा के पास तीन फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है, क्या करता है, मन सोचता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। संकल्प करता है और विकल्प करता है माना क्या होता है, विकल्प करता है माना क्या करता है। संकल्प करना तो समझ में आता है सभी को ना, और विकल्प करता है माना क्या करता है, हाँ, नेगेटिव। अगर जिसको हिंदी अच्छी आती हो तो उसको पता होगा हिंदी में विकल्प शब्द अल्टरनेटिव के लिए यूज किया जाता है। विकल्प, कितने विकल्प हैं आपके पास, या फिर आप देखो जो एग्जाम्स होती है ना, क्वेश्चन मल्टी क्वेश्चंस वाली जो एग्जाम्स होती है, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी, हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। तो उसमें क्वेश्चन लिखा है, आपको आंसर में एक्सप्लेनेशन विवरण डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, आपको आंसर भी दे दिए गए हैं, लेकिन उसमें चार चार ऑप्शन दिए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। तो उसमें यही लिखा रहता है अल्टरनेटिव, चूज एनी वन अल्टरनेटिव, विकल्प, चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आप चूज कीजिए। तो हमेशा विकल्प का मतलब निगेटिव नहीं होता है, एक अर्थ वो भी जरूर होता है, परंतु जब हम कहते हैं मन का स्वभाव है या मन का धर्म है संकल्प और विकल्प करना, तो कैसे करता है संकल्प और विकल्प। जैसे क्लास में भ्राता जी को आने में देरी हो रही थी तो हमने उनको फोन लगाया, तो हमने कहा क्या ऐसे हो सकता है हम दूसरे को चांस दे दें, भाई आप नहीं पहुंच रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, तो हम किसी और को बुला के जो घर में ही है अपने पास स्पीकर्स, या तो उसको चांस दे दे। कहा नहीं नहीं, सिर्फ टोल टैक्स से निकल जाए फिर तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सामने विकल्प आता है, क्या इसके बदले ये कर सकते हैं, या फिर आया चलो उससे अच्छा समय ऐसा ही न चला जाए तो ब्रेक दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कोई व्यर्थ थोड़ी था। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए विकल्प मन प्रदान कर रहा है, या तो आप ऐसे कीजिए कि जो अवेलेबल स्पीकर है उसको बिठा दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ब्रेक इनों को वैसे भी बाद में देना है, वो पहले कर लीजिए तो वो समय बच जाएगा। तो ये ऑप्शंस थे, और उसमें से हमने क्या चूज किया, चलो ब्रेक पहले ले लो। तो ये संकल्प और विकल्प काम किसका है, मन का, लेकिन चूज करना किसका काम है, बुद्धि का काम है। तो बुद्धि निश्चय करती है अर्थात निर्णय देती है कि इन दोनों में से किस चीज को प्रैक्टिकल में लाया जाए। अब सवाल उठता है कि बुद्धि का निर्णय किस आधार पे होता है, बुद्धि का निर्णय किस आधार पे लेती है बुद्धि निर्णय। हाँ, बुद्धि निर्णय लेती है ज्ञान के आधार से, और ज्ञान माना जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है, जो चित्त पे सारा स्टोर होता है ना, इतनी सारी क्लासेस सुन रहे हैं, फिजिकली नोटबुक में स्टोर किया जा रहा है, पेन की सहायता से लिख लिख के स्टोर किया जा रहा है, लेकिन चित्त क्या है, भूमिगत डायरी है, अंडरग्राउंड होते हैं ना, बेसमेंट होते हैं ना, तो चित्त भी क्या है, हमारी आंतरिक डायरी है, आंतरिक हार्ड डिस्क है, आंतरिक स्टोरेज प्लेस है, तो वहां पे सब कुछ स्टोर करते जाता है। तो चित्त पे न सिर्फ ज्ञान स्टोर होता है, लेकिन हमारी स्मृतियां, किसी इवेंट को लेकर हमारी स्मृतियां, हमारे अनुभव, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, ये सब कहाँ जाके जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अंकित होते हैं, चित्त पे होते हैं। तो जैसे ही मन संकल्प और विकल्प करता है, उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। वो विकल्प राइट दे रहा है गलत दे रहा है उसको कुछ नहीं पता है, बस ये विकल्प हो सकते हैं। जैसे मक्खी होती है ना, तो अभी अभी स्वच्छ जगह पर बैठी होगी और अभी अभी उड़ के कहाँ चली जाएगी, गंदी जगह पर चली जाएगी, क्योंकि उसे भान नहीं है गंदा क्या होता है और अच्छा क्या होता है, उसको सिर्फ मजा आ रहा है यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाने में। ऐसे मन भी उसी में एंजॉय कर रहा होता है, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर, शुभ क्या है अशुभ क्या है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, वो उसे ज्ञान नहीं है, और इसलिए वो ज्ञान किसके पास होता है, बुद्धि के पास होता है। तो बुद्धि के पास ये सारे विकल्प रखता है वो जाके, कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो बुद्धि ने भी जो निर्णय लिया वो किस आधार से लिया, जैसे आपका ये निर्णय जो लिया गया था ब्रेक का, किस आधार से लिया गया। हम आंगन में खड़े थे तो भाई कह रहा आप क्यों खड़े हैं ऐसे, मैं कहा इंतजार कर रही हूँ भ्राता जी का, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो उसने घड़ी की तरफ देखा, कहता 11:30 तो बजने को आ रहे हैं, फिर कब आएंगे आपके भ्राता साहब जी, और फिर कब आप उनको ब्रेक देंगे, तब तक तो जब आप ब्रेक देंगे ना तब तक सारा गन्ना रस साफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे की पूरी क्राउड आती है ना। तो वो अनुभव था ना मुझे, या जिसने भी वो सामने वाले ने मुझे सजेस्ट, उसको अनुभव था कि कई बार थोड़ा सा भी यहां से लेट होता है तो नीचे वाली जो क्राउड आती है वो पानी पीने सब देखने के लिए ही तो आए हैं ना, वो लोग जाते अब ग्लास लेकर खड़े हो गए, किसको मना करें, बोलो बाबा का घर है ना, किसको मना करें हम। तो वो पी के चले जाते हैं, फिर जिनके लिए बना था वो जाते हैं, तो कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। और इसलिए तो चित्त में जो स्टोर अनुभव था, उस अनुभव ने कहा बेटर है कि इनको हम अभी ब्रेक दे दें, ताकि गन्ने रस का भी लाभ इनको मिल जाए और पीछे वो क्लास का भी लाभ मिल जाए। अर्थात बुद्धि प्रभावित होती है चित्त में जो ज्ञान स्टोर किया हुआ है, जो अनुभव स्टोर किए हुए हैं, जो स्मृतियां, जो संस्कार हमारे बने हुए हैं। तो कैसे प्रभावित करती है? तो कहा जैसे आप एक दुकानदार के पास जाओ, समझो कपड़े वाला दुकान है, तो हम उसको कहेंगे कि साड़ी दिखाओ, तो साड़ी कोई एक टाइप की होती है क्या? सिल्क में चाहिए, शिफॉन में चाहिए, टेरिकॉट चाहिए, कितनी सारी वैरायटी होती है। तो वहां जो सेल्समैन बैठा है वो आपको पूछेगा कौन सी वाली, क्योंकि उसको पता है मेरे स्टोरेज में तो वैरायटी है, मैं उसमें से कौन सी वाली तुमको निकाल के दिखाऊं। अब हम क्या होते हैं, कई बार हमारी फर्म चॉइस होती कि इसी के लिए हम आए हुई, कई बार कहते दिखा दो जो पसंद आएगी, तो उसके पास जो जो है वो सारा हमारे सामने रखता जाता है। ऐसे ही चित्त भी क्या करता है, बुद्धि के सामने निर्णय लेने की कोई बात आई नहीं और उसके पास जो स्टॉक है वो सामने प्रवाह के रूप में भेज देता है, और उनसे प्रभावित होकर बुद्धि निर्णय लेती है। और इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का बर्तन क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो स्टोर्ड नॉलेज है, जो स्टोर्ड अनुभव है, जो स्टोर्ड संस्कार है, जो स्टोर्ड स्मृतियां हैं, वो आपको राइट दिशा दे रही हो। हाँ, दुनियावी रीति से बचपन से हमने क्या पढ़ा था, जैसे को तैसा। तो समझो मेरे जीवन में कोई सिचुएशन आई, सामने वाला मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, अब जैसे को तैसे वाली संस्कार बहुत गहरा जमा हुआ है अंदर, ये तो अभी ज्ञान में आए, और ज्ञान में आए तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे को तैसे से समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि आपका कार्मिक अकाउंट और गहराता जाता है। तो वो बेहोशी में हमने किया, उसने एक ईंट फेंकी तो मैं दो फेंकूंगा, उसने एक बोला मैं दो बोलूंगा, उसने एक झापड़ लगाई मैं दस लगाऊंगा, है ना भाई। मेरे को छेड़ने वाला तो वो था ना, मैं तो शांत बैठा था, अब मेरे को छेड़ा है तो मैं भी उसको अच्छा दिखाऊंगा, उसके एक के बदले मैं दस दूंगा। ये हमारी जब बेहोशी वाली जीवन थी, जब ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जो बेहोशी वाली जीवन में संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं, तो अब भले ज्ञान में आ गए हैं, ये ज्ञान है कि जैसे को तैसा करने से कार्मिक अकाउंट बिगड़ता जाएगा और उलझता जाएगा। तो ज्ञान है तो फिर क्या हो जाता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तोते को पद सिखाया गया तोताराम नलके पर नहीं बैठना, तो उसको रटना आता है पर उसको बात समझ में थोड़ी आती है, तो बैठ जाता है नलके पर और रटता है तोताराम नलके पर नहीं बैठना, तोताराम नलके पर नहीं बैठना, और बैठ रहा कहाँ है। और हम भी क्या करते हैं, मन में रिपीट कर लेते हैं, नहीं नहीं जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में तो जैसे का तैसा ही करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी वशीभूत हो जाते हैं चित्त में जो संस्कार स्टोर किए हुए हैं, उसके वश में आ जाते हैं। सिर्फ किसको नहीं पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध आता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों? वो अंदर संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं और वो हमें अपने वश में कर लेते हैं और उसके अनुसार हम कर्म कर बैठते हैं और तोते की तरह कहते रहते हैं जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए, जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए। तो जो ये चित्त में से निकल निकल कर प्रवाह बुद्धि के पास आ रहे हैं, यही बुद्धि रूपी बर्तन को क्या कर रहे हैं? मैला कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। वरना बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान तो दे दिया ना, आते ही बाबा के बनते ही बाबा ने क्या दिया हमें? दिव्य ज्ञान, दिव्य नेत्र दिया ना, तो ज्ञान तो बुद्धि में स्टोर हो गया ना। तो जैसे वो कहते हैं ना, अमृत के पात्र में एक बूंद विष की चले जाए सारा का सारा अमृत किस में परिवर्तन हो जाएगा? विष में परिवर्तन हो जाएगा। तो भले रोज हम मुरली सुन रहे हैं बुद्धि रूपी बर्तन को दिव्य बना रहे अर्थात सोना बना रहे हैं, लेकिन चित्त में जो बैठी हुई हमारे संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, वृत्तियां माना क्या? क्योंकि चित्त शब्द के साथ चित्त वृत्ति बोला जाता है, बोलते हैं ना चित्त वृत्ति, या बाबा कई बार बोलते हैं जो वृत्ति में होगा वही वाचा में आएगा, वही वातावरण में वाइब्रेशन फैलेंगे। क्या होता है वृत्ति? हाँ, वृत्ति माना क्या होता है? वृत्ति शब्द आया है वृत्त से, वृत्त माना गोल, वर्तूलाकार, गोलाकार। अब एक गोलाकार पथ तैयार किया गया है और उसपे गाड़ी को छोड़ दिया है घूमने के लिए, तो क्या करेगी वो? क्या करेगी? गोले घूमती रहेगी वो सीधा कभी नहीं जाएगी, वो गोल गोल। तो गोल गोल कितनी बार दोहरा लेगी अपने आप को? अनेकानेक बार, क्योंकि वही उसका रास्ता है, दूसरा कोई उसका रास्ता ही नहीं है। हाँ, एंडलेस, लिमिटलेस। वही तो हम भी अगर अपने आप को चेक करें, जीवन में कोई घटनाएं घट जाती है, हम कितनी बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, और हम कई बार सोचते भी हैं मैं क्यों रिपीट कर रही हूं, है अपने आप से बात भी करते हैं, पर हम अपने आप को उससे बाहर निकाल नहीं पाते हैं। रह रह के वही थॉट, रह रह के वही वाली बात। तो ये वृत्ति होती है जो आपको अपने जाल में, तो जैसे समुद्र में या नदी में एक होता है लहर, तो पानी है, समुद्र क्या है? जल राशि का भंडार है। अब उसमें से वही जल कुछ लहरों के रूप में आगे आ रहा है और कुछ जल भंवर तैयार कर रहा है। तो जो लहरों के रूप में आ रहा है, वो लहरों के रूप में आते 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 लहर खत्म हो जाती, लहर उठी और खत्म हो गई, और भंवर अपने आगोश में उसने जिसको ले लिया उसका सत्यानाश करके रख देगा, वो करेगा या नहीं करेगा? तो यही हाल होता है हमारा भी। वृत्ति माना भंवर, गोल 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 उसी में घूम रहे। तो जैसे एक पशु होता है ना, उसको खूंटे से बांधते हैं, तो वो क्या करता है पशु? अगर वो सोचे कि मुझे जो ये बंधन बांधा गया और खूंटे से बांध लिया गया है और अपने को छोड़ने के लिए वहीं पे घूमता ही रहे, तो क्या होगा? छूटेगा और ज्यादा फंसेगा। क्यों? जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा रस्सी पर बल पड़ेगा, अर्थात रस्सी ऐंठती जाएगी और उस ऐंठन में रस्सी की लेंथ कम होती जाएगी, लंबाई कम होती जाएगी ना, क्योंकि वो लपटती गई है तो छोटी हो जाएगी ना, तो वो छोटी होती जाएगी और उस चक्कर में गला भी कसता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं सत्यानाश। सत्यानाश हो जाएगा ना उसका। तो जरा हम सोचे कि हम भी भीतर में क्या कर रहे होते हैं, हम भी तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो हम उन्हीं उन्हीं बातों को बार 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 दोहरा रहे होते हैं, और जो हमें आत्म उन्नति की ओर नहीं ले जाकर पतन की ओर लेके जाती है। और इन्हीं सभी बातों को, क्योंकि चित्त में ही अगर रखा हुआ कुछ गलत नहीं है तो बुद्धि के पास वहां से जो आ रहा है गलत आएगा ही नहीं, तो बुद्धि रूपी बर्तन खराब होगा ही नहीं। दोनों तरफ से हो रहा है ना, इधर से भी मतलब बाहर की दुनिया से इंद्रियों के माध्यम से मन डेटा ले रहा है और मन बुद्धि को दे रहा है, लेकिन अब बुद्धि के पास जो आ गया, फिर भीतर भी एक दुनिया है चित्त। ये सारी दुनिया जो बाहर है वो सारी अंदर में बसी हुई है ना। ये कैमरा बाहर है लेकिन इसका चित्र मेरे अंदर अंकित है, ये आप सब बाहर हैं लेकिन पूरी सभा मेरे चित्त में अंकित है, ये मेडिटेशन हॉल मेरे से अलग है बाहर है लेकिन पूरा मेडिटेशन हॉल मेरे अंदर में अंकित है। तो अंदर जो अंकित है वहां से भी तो आ रहा है। जैसे ग्राहक गया दुकान पे, उसको अपनी नॉलेज इनसे उनसे पूछा था कि मुझे साड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए, तो थोड़ा कुछ ज्ञान लेके गया था और वो सारा उसने सुनाया, लेकिन सेल्समैन के स्टोरेज में तो उससे भी ज्यादा भरा पड़ा है, उसने और कुछ दिखाया। समझ में आ रही बात? तो आपका अपना ज्ञान और सेल्समैन के पास जो स्टोरेज था उसका अपना। अब यहां पे हमें डिसीजन लेना होता है कि मैं आखिर भी कौन सी साड़ी लूं, कौन सा वाला वस्त्र लूं। तो ठीक इसी तरह से, तो जब हम कहते हैं कि हमें चित्त बुद्धि रूपी बर्तन की शुद्धि करनी है, अर्थात हमें अपनी वृत्तियों को भी पहले शुद्ध करना होगा। चित्त में जो वृत्तियां उठ रही है, और दूसरा समर्पण भाव। आप देखेंगे रामायण के अंदर चारों भाई जब पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे हैं राजमहल में, तो गुरु विश्वामित्र भी पहुंच गए और राजा से कहते मुझे ये दोनों सुकुमार आप दे दीजिए, किस लिए, कि मैं इन्हें अपने साथ वन में लेकर जाऊंगा, हम यज्ञ आदि करते हैं, दिव्य अस्त्र आदि तैयार करते हैं, लेकिन राक्षस क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं, हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देते हैं। और फिर वो दोनों सुकुमारों को लेकर, राम और लखन को लेकर चल पड़े हैं, तो सबसे पहले कहते ताड़का का वध करना हुआ है। किसका वध किया है? ताड़का। और उसके ही दो पुत्र दिखाए, सुबाहु और मारिच। तो पहले किसका वध किया? ताड़का का, फिर सुबाहु मारिच को, क्योंकि वो उसके पुत्र है। जननी ही नहीं रहेगी तो फिर पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर सुबाहु और मारिच को सिर्फ मार दिया जाए पहले, लेकिन जननी को नहीं मारा जाए, तो वो दूसरे और तैयार करके दे देगी ना समाज को। तो ये ताड़का किसी और का नाम नहीं, ये प्रतीक है हमारे भीतर बैठी हुई आसुरी वृत्तियां, हमारे भीतर बैठी हुई आसुरी वृत्तियां, इनको हमें खत्म करना होगा। और उसके लिए बाबा कई बार कहते हैं ये मुख्य मुख्य जो पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने पूरा डिटेल दिया है कि काम जब वार करे आपके ऊपर काम विकार, तो आप इसको किस में परिवर्तन कर दो, शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर दो। काम के रूप में जब विकार वार करेगा तो तुम्हारा सत्यानाश करेगा, लेकिन शुभ कामना में परिवर्तन करोगे तो विश्व सेवाधारी बन जाएगा। आप विश्व सेवाधारी के दर्जे को प्राप्त कर लेते हैं। क्रोध तुम्हारे होश उड़ा देता है, गुस्से में उसके होश ही उड़ गए थे। बोलते ना गुस्से में क्या आपा खो देते हैं, ऐसे बोलते ना। आपा खोना मतलब ही अपने होश हवास को खो बैठना। गुस्से में ऐसा ऐसा बोल देते हैं, ऐसा ऐसा कर बैठते हैं कि जब गुस्सा शांत हो और जो तुमने किया, जो तुमने बोला उसके सामने सब रखा जाए तो उसको ही वंडर होता है, मैंने ये ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया। क्योंकि अभी वो होश में है तो होश में उसको पता चल रहा है ये सब कुछ मैंने गलत किया है, लेकिन जब गुस्से में था वो बेहोश था और उसको पता नहीं चला। तो बाबा कहते हैं गुस्सा जो तुम्हें बेहोश करता है, इसके बदले में इसको कैसे परिवर्तन करो, रूहानी जोश, रूहानी खुमारी, रूहानी नशा, कि जिस रूहानी नशे से क्रोधाग्नि नहीं योग अग्नि प्रज्वलित करे, लगन की अग्नि। कल भाई जी का प्रश्न था ना, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है, घर जाते हैं 10-15 दिन तक स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सोडा वाटर हो जाती है। कारण क्या, यहाँ लगन की अग्नि काम कर रही है और बाद में लगन की अग्नि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। और इसलिए बाबा कहते हैं सदा लगन की अग्नि को, योग अग्नि को प्रज्वलित रखो, तब जाके क्रोध से, क्रोध की वृत्ति से को आप मुक्त हो सकेंगे। और वो वृत्ति ही अगर नहीं होगी तो वो बुद्धि रूपी बर्तन में प्रवाह के रूप में आएगी ही नहीं। है तो आ रही है, एक ग्लास में पानी रखा, अब गिरेगा टेबल, धक्का लगेगा, ग्लास गिरेगा तो पानी गिरेगा ना। दूध रखा होगा तो दूध, तो जो अंदर में वही तो बुद्धि रूपी बर्तन में वो उंडेल देती है वृत्तियां। वृत्तियां क्या कर देती है, बुद्धि रूपी बर्तन में उंडेल देती है। और इसलिए चित्त की शुद्धि भी जरूरी है, क्योंकि बुद्धि चित्त से प्रभावित हो रही है ना, तो बुद्धि मन से भी प्रभावित हो रही है, बुद्धि चित्त से भी प्रभावित हो रही है। और इसलिए मन मना आसुरी वृत्तियों से भी हमें अंकुश रखना है, और साथ साथ जो हमारे संस्कार है, जो गलत ज्ञान स्टोर है, उससे भी हमें अपने आप को बचाकर रखना है। तो जो गलत ज्ञान हमने भर के रखा है उसके बदले में दिव्य ज्ञान का श्रवण, उसकी स्मृति, उसका स्मरण बार बार होता रहे। और इसीलिए हमने पहले दिन आपको कह दिया था जो कुछ आप सुन चुके हो वही सुनाया जाएगा, वही सुनाया जाएगा, नया कुछ भी नहीं सुनाया जाएगा। क्योंकि बार बार उसी ज्ञान की स्मृति से फिर वो जाके बैठ जाएगा इतना गहरा कि कोई कितना भी मुझे कहे कि अरे जैसे को तैसा दो न फल, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला दिव्य ज्ञान अभी उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है, उसकी स्मृति मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं, आज मैंने जैसे को तैसा किया ये कल मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और इसलिए कोई कितना भी मुझे बाहर से प्रेरित कर रहा है, पहले तो अंदर से ही प्रेरणा आ रही थी क्योंकि वही वाला संस्कार गहरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैंने उसकी सफाई कर दी, अब बाहर वाला मुझे कोई कह रहा है, मुझे उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो ताड़का का वध करना पड़ेगा और बुद्धि जो अशुद्ध हो गई है उसका भी उद्धार करना पड़ेगा। अहिल्या उद्धार कुछ और नहीं है, बुद्धि का उद्धार है। और कैसे हुआ बुद्धि का उद्धार? वो अशुद्ध हो गई थी इंद्र के वश में आके, लेकिन कैसे हुआ फिर उसका उद्धार? कैसे हुआ उसका उद्धार? हाँ, उसको कहा राम जब आएंगे, जब उसकी चरण रज पड़ेगी, स्पर्श होगा तुम्हें, तब तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन तब तक तुम क्या करती रहो? उसको पुकारती रहो, उसको याद करती रहो। ठीक ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा, माँ ने उसको खिला पिला के तैयार कर, छोटा बच्चा जो होता है ना, दूध पीता बच्चा, उसको सुला दिया है झूले में। अब सोने के बाद वो जो खाया है वो निकाल भी देता है, लेटरिन भी कर देता है। अब माँ अभी तक तो आई नहीं है, तो गंदा ही है वहां पे, तो वो अपनी कोशिश से वहां पे साफ हो सकता है? हो सकता है साफ? जितना ज्यादा वो अपने आप को हाथ पैर मारेगा उतना ज्यादा वो अपने आप को क्या कर देगा? उतना ही ज्यादा गंदा करेगा। लेकिन जहां उसको थोड़ा सा एहसास हो जाता है गंदा है, चिल्लाने लगे वो, रोने लगे, मां के पास आवाज जाएगी, माँ दौड़ के आएगी, वो उसकी पूरा उसका सर्वेक्षण कर लेती है और उसकी सफाई कर देती है, कर देती है ना। ठीक ऐसे ही अहिल्या को समझ में आ गई थी, बाद में उसने ये बात स्वीकार कर ली थी कि हाँ मैंने गंदा काम किया है, लेकिन उसको फिर स्वीकार कर लिया, उसको फिर स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके उस राम की याद में रात और दिन लगी रही। और जब वो आए राम तो कंप्लेन नहीं की उसने, उसने क्या कहा? यूं देखा जाए तो श्राप तो उसको गौतम ऋषि ने दिया था ना कि जाके तू जड़वत बन जा, लेकिन उसके प्रति उसके अंदर में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। श्राप पाने के बाद भी क्या कहती है राम जी से? कहती है पति ने जो श्राप दिया वो श्राप नहीं, मेरे ऊपर उपकार किया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि मैं जड़वत हो गई तो तुम्हें पुकारती रही और तुम आज मेरे सामने आ गए। इसका अर्थ क्या है एक्चुअली? कि श्राप मिला है लेकिन अंदर में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। तो ये है उद्धार तभी होता है कि हमारे से जो कुछ गलतियां हो गई हैं और कोई निमित्त बना उसके लिए, तो जो हमने गलती की है उसको भी दिल से स्वीकार कर लें और जो निमित्त बना है उसके प्रति जो हमारे अंदर में टू मच नेगेटिव कहो, बदले की भावना कहो, हेय दृष्टि कहो, जो भी रहती है उसको भी हमें क्या कर देना है? साफ कर देना है। तब जा करके राम जी हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये जो भट्टी मिली है आपको समय, वो इसीलिए मिला है, एकांत में बैठो, भीतर जाओ और देखो क्या क्या अंदर से उठ रहा होता है, उसको हम साफ करें। क्योंकि जब भी हम योग लगाने जाते हैं, योग में यही तो बात आ रही कि अंदर से कुछ उठ रहा है, हम तो चाह रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप बनकर शांति के सागर पिता के साथ एक हो जाऊं। योग करने के लिए तो हम उसी उद्देश्य से बैठते हैं ना, पर होता क्या है, अंदर जो भरा पड़ा है वहां से प्रवाह, वहां का नलका चालू हो जाता है, क्योंकि यहां वाले नलके हमने बंद कर दिए ना, बैठ गए ना एक जगह पे, तो आंख को बाहर की दुनिया देखनी नहीं है, कान को बाहर के लोगों की बातें सुननी नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, जीभ को देना नहीं है, तो ये नलके तो बंद कर दिए हमने, लेकिन भीतर वाला नलका चालू हो जाता है चित्त का, और वहां से धीरे धीरे आता रहता है आता रहता है, और हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं, और लाल लाइट सफेद लाइट में बदल जाती है और योग पूरा हो जाता है। होता है ना ऐसे? तो एकांत में बैठकर चित्त की सफाई के लिए सजगता होना जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, जब हम कुछ काम कर रहे होते चलता रहता है ना कुछ ना कुछ, लेकिन हम अपने काम में मगन है, चल रहा है और काम में मगन है, लेकिन एकांत में बैठकर क्या करना होता है, उसके प्रति पहरेदार बन जाना होता है, सजग प्रहरी बनकर क्या हो रहा है देखना होता है, और प्रहरी तो फिर भी अटैक कर देगा, देखेगा ये दुश्मन है, हमें अटैक भी नहीं करना है, जिसको फिर दूसरा नाम दिया जाता है साक्षी हो जाना होता है कि जी है ये बातें अंदर में, जो चित्त में से निकल निकल कर बाहर आती रहती है। तो ये सजगता जो अंदर था, जिसको बाहर लाया गया, और उसके प्रति अगर सजगता बनी रही तो अब वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब अभी उसकी सफाई हो गई। एक बच्चा भी जब कुछ आपका अटेंशन चाहता है तो कुछ ना कुछ हरकतें करता है नहीं करता है, एक हरकत करेगा आपका ध्यान नहीं गया, दूसरी हरकत करेगा आपका ध्यान नहीं गया, तीसरी हरकत करेगा, फिर हम बोलते हैं बेटा मैं तेरे को जब से देख रही हूं मैं कुछ बोल नहीं रही हूं ना तेरे को, तो तू कुछ के कुछ करता जा रहा है एक के बाद एक, तो वो वही तो चाहता था आपका अटेंशन। अगर आप अटेंशन दिए होते तो दूसरी हरकत करता क्यों? आज हम भीतर में क्या उठ रहा है उसके ऊपर अटेंशन देते नहीं है, वो हमारा अटेंशन चाह रहा है, और अटेंशन चाह रहा है का मतलब बता रहा है अंदर में ये है, हमें उसकी कॉन्शियस दिला रहा है, हमें उसकी स्मृति दिला रहा है कि भीतर में ये बहुत कुछ पड़ा है बारूद, ये बारूद की सफाई नहीं होगी तो ये विस्फोट होके तुम्हारा ही खात्मा हो जाएगा, और इसलिए इसके प्रति क्या हो जाओ, सजग हो जाओ। और जब ऐसी सजगता आती है, हमारे अंदर के बारूद को हम देखने लगते हैं, वो धीरे धीरे जो प्रवाह बार बार आ रहा था वो प्रवाह जैसे कि अब बंद हो गया, या यूं कहे कि वो जो वृत्ताकार में, जैसे कहा कि एक गोलाकार पथ में गाड़ी को खड़ी कर दिया तो गाड़ी बार बार क्या हो रही थी, उसी गोलाकार पथ में न जाने कितनी बार चक्कर लगाती जा रही थी। लेकिन हमारी सजगता क्या करती है, उस गोलाकार पथ की सफाई कर देती है, और चूंकि गोलाकार पथ की ही सफाई हो गई तब गाड़ी वहां पे बार बार घूम नहीं सकती। तो सजगता का इतना रोल है, और उस सजगता के लिए एकांत का रोल है, और जब ऐसे एकांत में सजगता होगी तब कहीं जाकर चित्त एकाग्र होगा, एक में लगेगा, वरना उसके अंदर जो है वो बहुत सारी बातों को आपके सामने फेंकता जा रहा है और इसीलिए चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है। और एकाग्र ही नहीं हो रहा है तो भगवान में वो लगेगा भी नहीं। और इसीलिए कहते हैं योग माना क्या, चित्त वृत्ति निरोध का ही नाम क्या है, योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, और बाबा उसी को सिंपल करके देते हैं कि एकाग्र चित्त हो जाओ पहले। तो कैसे होंगे एकाग्र चित्त, जो अंदर में चित्त में से जो स्टोर पड़ा है, उसमें से जो वृत्तियां निकल निकल के आ रही हैं, उसको सजगता से देख देख कर जो बाबा ने तरीके दिए हैं बदलने के, जैसे काम विकार को कैसे परिवर्तन करो शुभ कामना के रूप में, क्रोध को कैसे परिवर्तन करो, हाँ कैसे परिवर्तन करो, क्रोध के बदले सहन शक्ति शस्त्र हो जाएगा वो आपका। लोभ आ जाए तो होता तो यही ना, किसी धनी को देख लो, अंदर में जो लोभ वृत्ति बैठी है वो जाग जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। कहते एक बाबा जी होते ना, से बहुत सारे बाबा जी, किसी गांव में आया और उसने अपना जमाया आसन आदि और कहा कि तुम मेरे पास एक चीज लाओगे मैं तुमको दो चीज करके दूंगा। तो किसी ने एक रुमाल दिया, उसने हाथों हाथ दो करके दे दिया। तो ऐसे देखते देखते उसके पास भीड़ लग गई कि एक बाबा जी आया है कि जिसको आप एक चीज देंगे वो डबल करके दे देगा। तो सब आ गए। फिर उस छोटे से गांव का जो छोटा सा राजा था, उसको भी मन में आता है, वहां तक भी खबर पहुंची, उसको भी मन में आता है कि मैं राजा हूं परंतु मेरे राजकोष में जितना धन होना चाहिए उतना है नहीं, तो क्यों नहीं मैं भी इस बाबा जी के पास चला जाता हूं और जितना भी मेरे पास राजकोष में धन है वो उसको, क्योंकि कंडीशन ये थी कि आप देंगे मेरे को उसको मैं डबल करके दूंगा। तो इसके मन में ऐसा आया तो लेके गया और उसने कहा देखो कि ये एक रुमाल से दो रुमाल, तो एक रुमाल तो छोटी चीज होती है ना, एक पेन से दो पेन छोटी चीज है ना, लेकिन आप इतना जो धन लेकर आए हैं ये थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए ये तुरंत नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक रात का समय लगेगा, मुझे एक रात का समय लगेगा। राजा ने कहा ठीक है, कहा उसको कहा तुम अगली सुबह आ जाना, आपका धन मैं डबल करके दे दूंगा। राजा चला गया, अगली सुबह गया तो बाबा जी है ही नहीं, बाबा जी वहां है ही नहीं, ना उसका धन है। और पूरे गांव भरे में वो उस बाबा जी के प्रति निगेटिव प्रचार कर रहा है, पूरे गांव भर में उसका न सिर्फ निगेटिव प्रचार कर रहा है लेकिन अपना भी रोना रो रहा है कि मैं तो लुट गया, इसने मुझे लुटा दिया। किसी समझदार ने कहा तुम क्यों व्यर्थ उसका इतना सारा निगेटिव प्रचार कर रहे हैं, वो आया था क्या आपके पास बोलने के लिए मुझे धन दो, वो आया था आपके पास, आप खुद गए थे ना, आप खुद गए थे और क्यों गए थे, आप राजा हो आपको अकल नहीं है क्या कभी ऐसे डबल हो जाता है क्या, उसने एक दो जो चीजें किया हो तो होता हाथ की सफाई होती है ना वो तो सारी। तो ये जो तुम कह रहे हो कि वो मेरे को लूट के चला गया, उसने नहीं लूटा है, तुम्हारी लोभ की वृत्ति ने तुम्हें लूटा है। किसने लूटा है तुमको, तुम्हारी खुद की, तुमको लोभ जागा ना कि मेरे पास इतना धन रातों रात में डबल हो जाए। भाई धन अपने पास हो उसके लिए तो मेहनत करनी होती है ना, बिना मेहनत के रातों रात डबल हो जाए ये लोभी प्रवृत्ति तो है और क्या है। तो क्या लूटा तुमको बाबा जी ने, नहीं है, लूटा तुमको तुम्हारी अपनी लोभी प्रवृत्ति ने है। अगर तुम्हारे भीतर ये लोभी प्रवृत्ति नहीं होती, लोभ की वृत्ति नहीं होती, तुम क्यों जाते हो उसके पास अपना धन ले जाकर? और जब लेकर ही नहीं जाते तो तुम लूटते क्यों? तो कौन कारण बना? तुम्हारे धन के लूट जाने का कारण तुम हो या वो हो? तो ऐसे ही हम कहते इसके कारण गुस्सा आया, इसके कारण ऐसा हुआ। ऐसी कितनी सारी हमारे अंदर वृत्तियां बैठी हुई है। मेरी खुद की वृत्ति, लेकिन मैं उंगली उठाता हूं दूसरे पर। तो ऐसी जो है वृत्तियां, उनको सजगता, उनके प्रति सजग होकर उनको देखें तो चित्त से उनकी सफाई होगी, तो चित्त भी शुद्धि हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? और उसके साथ साथ और एक शुद्धि की जरूरत होती है, मैंपन की। मैं करते रहते हैं ना, मेरा मेरा मेरा, उसकी भी शुद्धि। और इन्हीं चार चीजों को उस रामायण के प्रसंग में दिखाया है। ताड़का का वध, ताड़का का वध किया है, फिर अहिल्या का उद्धार, बुद्धि की स्वच्छता, फिर शिव धनुष का भंग, मैंपन का भंग। और जब मैंपन का भंग हुआ है, शिव धनुष भंग हुआ है, तो विष्णु का धनुष अपने आप आ गया राम जी के पास। दिखाते हैं ना ऐसे अपने आप। और फिर सीता का वरण भी हो गया है। तो इधर पहले किया है मरण, तारका का मरण, अहिल्या का तरण, शिव धनुष का भंग और उधर सीता का वरण। अर्थात जब तक हमारी आसुरी वृत्तियां हम क्लीन नहीं कर लेते, जब तक हम बुद्धि को समर्पित नहीं कर देते, शुद्ध नहीं बना देते, मैंपन नहीं छोड़ते हैं, मैंपन छोड़ना माना ही शिव धनुष को भंग करना, तब तक विष्णु का धनुष हमारे पास नहीं आ सकता। अर्थात तब तक परमात्मा के योग की किरणें हमारे तक नहीं पहुंच सकती है। ये सब बीच में क्या है? बाधाएं हैं कि परमात्मा और मैं इधर आत्मा, उसकी किरणें आत्मा के ऊपर पड़ सके, उसके लिए बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो बाधाएं क्या क्या हो रही हैं? विकार वृत्तियां, बुद्धि का भी अहम होता है ना, मैं करते रहते हैं ना हम, उस मैं का समर्पण। अहिल्या ने समर्पण कर दिया अपना, तब जाके राम जी का स्पर्श मिला है उसको। तो समर्पण, तो ऐसे ही समर्पण में मेरा बोलने का भाव क्या है कि जब हम योग भी करें तो उसमें भी मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, वहां पर भी ये मैं को छोड़ना है। अर्थात पहले अपने अंदर जाके भीतर सजगता जागृत करें, सजगता से सफाई करें, और सफाई के बाद मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जाऊं, उसके प्यार में खो जाऊं, और उसके बाद ये संकल्प उठाना भी बंद कर दूं, मन और बुद्धि को समर्पण, क्योंकि बुद्धि बोल रही है ना इसमें, लेकिन मैं बोले जा रही हूं मतलब समर्पण अभी हुआ नहीं है। जब इन दोनों को समर्पण कर देंगे तब जाके परमात्मा के प्रकाश की किरणें आत्मा पर पड़ेगी, आत्मा की सेटिंग करेगी वो किरणें। क्या वाली सेटिंग करेगी, कौन सी वाली सेटिंग करेगी, क्या है लक्ष्य हमारा महसूसता द्वारा? संपूर्णता को प्राप्त करना, बाप समान बन जाना, यही लक्ष्य है हमारा। क्योंकि जब उतरे थे घर से, कैसे उतरे थे, उसके जैसे थे ना, उसके ही तो जैसे थे, और वापस जाने का टाइम आ गया है और उसके लिए उसके जैसे ही बनना है। तो उसके जैसे बनने के लिए भी बिना उसके सानिध्य के नहीं बन सकते। अपनी कोशिशों से हम संपन्न कभी नहीं बन सकेंगे। हमें समर्पण की आवश्यकता है। बच्चा अपनी कोशिश से सोचे कि मैं हाथ पर चलाऊं और मेरी गंदगी साफ हो जाए, कदाचित नहीं हो सकती। पशु बंधा हुआ है खूंटे पर और सोचे मैं गोल 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 घूमकर इस पाश से खुल जाऊं, बंधन मेरा खुल जाए, वो और ही उसके भीतर जकड़ता जाएगा। तो बजाय इसके क्या करना है, बच्चे को भी समर्पण कर देना है, आवाज लगा देना है कि मेरे बस की बात नहीं है, ये तो तुम आ जाओ और मुझे साफ कर दो। पशु भी क्या करता है, आवाज लगा देता है तो उसका मालिक आता है, फिर उसको खोलता है। हमें भी बस उसको आवाज लगानी है, अर्थात उसको याद करना है, उसके पास पहुंच जाना है, फिर वो हमें साफ कर देगा अपनी किरणों से। इसी को ही तो कहते योग से विक्रम विनाश। पर उसके लिए उसके पास जाना पड़ेगा। पर उसके पास जा सकूं उसके लिए बीच में जो व्यवधान आ रहे हैं वो खाली कर निकालने पड़ेंगे, वरना हम उसके पास जा ही नहीं पाते हैं। हम किसके पास चले जाते हैं, चित्त के पास चले जाते हैं सिर्फ। हमारे चित्त के अंदर में जो स्टोर है उसका ही चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन वो चित्त अभी मेरा उसमें एकाग्र हो जाए और तब जाकर उसके हम सानिध्य में बैठेंगे। और उसके सानिध्य में बैठते ही विकर्म विनाश की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी, बाप समान बनने की प्रोसीजर अपने आप शुरू हो जाएगी। कैसे कैसे शुरू हो जाएगी अपने आप? एक वीणा को कमरे के एक कोने में रख दो और दूसरी वीणा को उसी कमरे के दूसरे कोने में रख दो और कमरा पूरा खाली है, और एक संगीतज्ञ, अनुभवी संगीतज्ञ आके एक वीणा की तारों को छेड़ दे तो कंपन उठेगा तारों में, स्वर लहरियां पैदा होगी, वाइब्रेशन फैलेगा, वाइब्रेशन गमन करते हुए वो दूसरी वीणा को जाके उनके तारों को छुएगा और उसमें से भी क्या होगा, वैसा ही वाला स्वर निकलेगा जो जिसको संगीतज्ञ ने छेड़ा है। इसको संगीतज्ञ ने नहीं छेड़ा है, बल्कि इसको किसने छेड़ा है, संगीतज्ञ के उस वीणा को छेड़ने से जो वाइब्रेशन निकला है वो वाइब्रेशन छेड़ रहा है इसको, और वो वाइब्स इसको छेड़ के कैसी वाली इसमें से आवाज निकाल रहा है, सेम जैसी वो। तो ऐसे ही हम भी जाके सिर्फ परमात्मा के पास जितना उसके साथ प्यार करना है, मीठी मीठी बातें करना सब करो, लेकिन फिर कुछ मार्जिन रखो उसके प्यार में खो जाने की, शांत हो जाने की। उस शांति के पलों में ही भगवान के वाइब्रेशन मेरी वीणा के तारों को अर्थात आत्मा के प्रकंपन को अपने प्रकंपन जैसा सेटिंग कर देगा। अर्थात जब मैं ऐसा अनुभव करके उतरूंगी नीचे, तो अब मेरी वीणा मेरी आत्मा से अपने आप वो प्रेम वाली फाइल प्ले होती रहेगी, शांति वाली फाइल अपने आप प्ले होती रहेगी। और अब मैं योग से उठने के बाद कितनी ही गुस्से वाली सीन क्यों ना हो, मैं गुस्से में नहीं आ सकती हूँ। कितना ही एक बैड न्यूज़ मेरे सामने आई है कि फलाने ने आपके साथ कितना बुरा किया है, मैं उसके साथ घृणा का भाव जागृत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्रेम की फाइल बज रही है, मेरी शांति की फाइल बज रही है। अर्थात मुझ आत्मा से प्रेम के प्रकंपन बह रहे हैं वातावरण में, शांति के प्रकंपन बह रहे हैं। क्योंकि ये तो हमें पता है ना, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी सब मेरे खुद के गुण हैं, संस्कार हैं, पर वो सारी की सारी फाइलें क्या है मेरी, बंद पड़ी है। लेकिन एक बार भगवान के पास जाके इतना शांतिपूर्वक बैठते हैं, वो हमारे उन फाइलों को ऐसा प्ले कर देता है कि अब वो प्ले होती ही रहती है। वैसे क्या प्ले हो रही थी, गुस्से वाली प्ले होती रहती थी, नफरत वाली प्ले होती रहती थी, चिड़चिड़ वाली प्ले होती रहती थी। लेकिन मैंने थोड़ी सी सजगता बरती, उस सजगता से मैंने चित्त को एकाग्र किया और उस एकाग्र चित्त से भगवान पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर शांत हो गई। अब उसने मेरे ऊपर काम किया और मैं, जो हमारा लक्ष्य है संपन्नता की ओर बढ़ने का, बाप समान बनने का, जैसे उतरे थे शुद्ध उतरे थे और शुद्ध होके जाना है, उस शुद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म शुद्धि मतलब ही मन की शुद्धि, आत्म शुद्धि मतलब ही बुद्धि की शुद्धि, आत्म शुद्धि मतलब अहम की शुद्धि और आत्म शुद्धि मतलब चित्त की शुद्धि। जब इन चार की शुद्धि होगी तब वास्तव में आत्म शुद्धि होगी, और वो आत्मा शुद्ध परमात्मा के साथ बैठेगी तो परमात्मा उसको अपने जैसा बना देगा। तो उसके लिए शुरुआत होती है महसूसता से, शुरुआत होती है सजगता से, और उस सजगता के लिए एकांत के पल, और उस एकांत के लिए बाबा ने आपको ये सुंदर भट्टी का अवसर दिया है। तो अवश्य ही आप सभी इस अवसर का लाभ उठाएं और शाम को जो 5 से 6 संगठित योग का समय है, अच्छी रीति से सजगता पूर्वक अपनी चेकिंग करते हुए चित्त को एकाग्र करें और बाबा के साथ लगाकर पावरफुल योग से अपने आप को भरपूर और हल्का करके बाप समान बनने की यात्रा में अग्रसर हुए। ओम शांति।